11. सूफी साधक और सूफी साधना। साधारणतः मुसलमानों में यह विश्वास प्रचलित है कि इस दृश्यमान जगत के साथ ही साथ एक अदृश्य जगत भी है। इस अदृश्य जगत का ज्ञान सबको नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन इस दिख पड़ने वाले संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जिन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस अदृश्य संसार को देख सकते हैं। इन व्यक्तियों में बड़ी बड़ी शक्तियां वर्तमान रहती हैं और वे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। इस प्रकार के दिव्य शक्ति प्राप्त मुस्लिम संतों को वली कहते हैं। वली का बहुवचन में औलिया रूप हो जाता है। ऐसी प्रचलित धारणा है कि औलिया का परमात्मा के साथ एक निकट का संबंध होता है। उनके लिए दृश्य तथा अदृश्य जगत में कोई अंतर नहीं है। जब वे भावाविष्ट अवस्था में रहते हैं तो उनके और अदृश्य जगत के बीच का अवरोध दूर हो जाता है और उन्हें सत्य के दर्शन होते हैं। इस अवस्था में वे पैगम्बर के समकक्ष हो जाते हैं, फिर भी पैगम्बर के साथ उनका बराबरी का दर्जा नहीं हो सकता। प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक काल में शेख या औलिया का स्थान पैगम्बर से नीचे का ही है। सभी पैगम्बर संत हैं, लेकिन सभी संत पैगम्बर नहीं हैं। सनातन पंथी इस्लाम के इस दृष्टिकोण के अनुसार पैगंबर मानवीय गुण दोषों से परे हैं, जबकि संत कुछ ही समय के लिए उस स्थिति में रहते हैं। कश्फ पृष्ठ 235-236। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि संत पैगंबर से भी बढ़कर होते हैं। वही पृष्ठ 236। कहा जाता है, संतों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वे आध्यात्मिक तत्वों के जानकार हों, और न यही जरूरी है कि वे धार्मिक ग्रंथों में निरत रहें। फकीरी जीवन बिताने वाला अथवा बहुत बड़ा सदाचारी और निष्ठावान, पृष्ठ संख्या 334, व्यक्ति ही संत हो सकता है। जिसे भावाविष्ट अवस्था और उल्लास की प्राप्ति हो जाए, वही वली है। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर उसके लिए संसार का बंधन नहीं रह जाता और न वह संसार का रह जाता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वह बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकता है। ऐसे लोगों के प्रति साधारण जनता में श्रद्धा और भक्ति के भाव होते हैं। साधारण जनता अपने सांसारिक कष्टों के निवारणार्थ उनकी पूजा करती है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सचेष्ट रहती है। संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और इस प्रकार के विश्वास अधिकांश सूफियों के ही कारण हैं। सूफियों का ऐसा विश्वास है कि इस्लाम के अनुयायियों में वे विशेष रूप से परमात्मा के कृपा पात्र हैं। संतों के बारे में उनका ख्याल है कि वे परमात्मा के वली मित्र हैं, इसलिए सूफियों के भी अंतर्गत उन्हें परमात्मा का विशेष अनुग्रह प्राप्त है। इस प्रकार से वे समझते हैं कि साधारण मनुष्य और परमात्मा का जहाँ तक संबंध है, उनमें सूफियों का विशिष्ट स्थान है। इसी प्रकार से सूफियों तथा परमात्मा के बीच संतों का है। कहा जाता है कि कुरान में जो यह कहा गया कि परमात्मा के औलिया मित्रों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, 10:63, अथवा खुदा ईमान लाने वाले लोगों का वली मित्र है, 2:58, उन्हीं संतों को लक्ष्य में रखकर कहा गया है। ये संत परमात्मा के कितने कृपा पात्र और सन्निकट समझे जाते हैं, इसका अनुमान एक हदीस से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि जो एक वली संत को कष्ट पहुंचाता है, वह वास्तव में मेरे परमात्मा के साथ मुखालफत करता है। प्रसिद्धि प्राप्त संतों को लोग शेख वली कहा करते हैं, उन्हें मुराबीद भी कहते हैं। इन संतों की आध्यात्मिक शक्ति और गुणों के बारे में अल हुजवीरी ने कहा है, कश्फ पृष्ठ 213, परमात्मा ने आज तक पैगंबरी शक्ति को बचा रहने दिया है और संतों के द्वारा पृष्ठ संख्या 335 उसे प्रकट करता है, जिसमें कि परम सत्य के चिन्ह और मोहम्मद की सत्यता के प्रमाण दृष्टिगोचर होते रहें। उस परमात्मा ने संतों को सृष्टि का शासक बनाया है। उनके अवतरित होने के प्रसाद स्वरूप आकाश से वृष्टि होती है तथा उनके जीवन की पवित्रता से पृथ्वी से पौधे उगते हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से मुसलमान काफिरों पर विजय प्राप्त करते हैं। औलिया के संबंध में यह समझा जाता है कि चूंकि वे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं, इसलिए परमात्मा ने उन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। साधारण जन अपने इसी विश्वास के कारण अपने दुखों के निवारण करने के लिए उनका स्मरण करते हैं, उनके मकबरों पर शीरिनी चढ़ाते हैं और मन्नत मानते हैं। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए, किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग संतों के मजार पर नजर चढ़ाने की बात कहते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे संत के मजार पर बलि चढ़ाते हैं। जो धनी हैं वे इन मजारों के दर्शन के लिए जाते हैं तो गरीबों को दान देते हैं, पैसा बांटते हैं या रोटी देते हैं। संतों के मकबरों के संबंध में एक हदीस का हवाला दिया जाता है कि अगर तुम्हारा हृदय शोक संतप्त है तो पवित्र आत्माओं की कब्र के पास जाओ और शांति की खोज करो, दर पृष्ठ 88। संतों के मजारों के दर्शन के लिए लोग जो जाते हैं उसे जियारत कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि परमात्मा के विशेष प्रेम पात्र होने के कारण संत कभी मरते नहीं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जिस पीर या संत की पूजा लोग उसके जीवन काल में करते हैं उसे उसकी मृत्यु के बाद छोड़ दें। वास्तव में जिन लोगों ने जितनी प्रसिद्धि पाई है तथा जिनकी करामातों की जितनी अधिक कहानियां प्रचलित हैं, मरने के बाद भी प्रायः वे उतना ही महत्व रखते हैं। उनकी कब्र को लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं और उसको अच्छी अवस्था में बनाए रखने के लिए पृष्ठ संख्या 336 समुचित व्यवस्था करते हैं। उन पर फूल चढ़ाते हैं और चिराग जलाते हैं। सुप्रसिद्ध संतों की कब्रों पर सुंदर इमारतें भी बना दी जाती हैं। सुंदर बेश कीमती दुशालों अथवा जरी के काम किए हुए रेशम के वस्त्रों से वे ढक दी जाती हैं। इमारतों की खिड़कियों या मकबरों के चारों ओर बने हुए बाड़ों की छड़ों में लोग चीथड़े लपेट देते हैं। लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें पुण्य लाभ होगा और विशेष संत के प्रभाव से उन्हें सफलता मिलेगी। इन मकबरों में उस संत की सेवा के लिए संसार त्यागी दरवेश रहते हैं। वे स्वयं भी पवित्र जीवन बिताने वाले होते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए अथवा किसी अन्य काम में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग उन दरवेशों से मृत संत से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। ये सेवा में नियुक्त दरवेश स्वयं शेख या औलिया हो सकते हैं और अपने साथ एक या दो मुरीद शिष्य रखते हैं जिन्हें वे आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। वैसे तो इन मकबरों या दरगाहों के दर्शन के लिए लोग बराबर ही जाते हैं, लेकिन विशेष अवसर पर अथवा उर्स के समय विशेष रूप से लोग वहां जाते हैं। उर्स का मतलब विवाहोत्सव है। उस समय संत की समाधि के निकट खूब उत्सव मनाया जाता है और मेला लगता है। साल भर में यह एक बार होता है और संत के मृत्यु दिवस पर मनाया जाता है। सूफियों के अनुसार मृत्यु के दिन संत का अल्लाह के साथ मिलन होता है। संत की आत्मा परमात्मा के साथ एकत्व के सूत्र में बंध जाती है। उस दिन जाकर लोग बड़े भक्तिभाव से उस संत की समाधि के पास फातिहा पढ़ते हैं और संपूर्ण कुरान का पाठ किया जाता है। साधारणतः ये मकबरे संतों की मृत्यु के बाद उनकी समाधि पर बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी संत के नाम पर किसी विशेष स्थान पर मकबरे बना दिए जाते हैं। इस तरह का एक मकबरा श्रीनगर कश्मीर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है और चटगांव में बाबा फरीद के नाम पर एक मकबरा बना है जो वास्तव में पाक पतन पंजाब में मरे और पृष्ठ संख्या 337 वहाँ दफनाए गए। सूफी पृष्ठ 107। बहुत से ऐसे भी औलिया हैं जिनकी कब्र का पता लोगों को नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि उनकी कब्र का पता जीवित संतों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण लग जाता है। दर पृष्ठ 89। औलिया लोगों के संबंध में किसी प्रकार का संदेह प्रकट करना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। उनके आचार विचार के संबंध में लोगों के मन में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं उठते। अद्भुत वेश वाले तथा अद्भुत ढंग का व्यवहार करने वाले औलिया देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ तो नंगे ही घूमते फिरते नजर आते हैं और लोग उनको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। स्त्रियों को उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं समझी जाती। कुछ ऐसे भी हैं जो लंबा चोगा धारण करते हैं। ये चोगे रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों से बने हुए होते हैं। कुछ घास खाते हैं और कुछ अपने भेड़ंगे पने से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। संत शब्द का प्रयोग इतना व्यापक हो गया है कि जलालुद्दीन रूमी जैसे सूफी कवि और साधक तथा इब्न अल अरबी जैसे दार्शनिक और कवि से लेकर पगले अर्धविक्षिप्त कम समस्त तथा अनाप शनाप बकने वाले सभी इस कोटि में आ गए हैं। E.W. लेन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न इजिप्शियंस में लिखा है कि मिस्र में जब वह प्रथम बार गया तो काहिरा की सड़कों पर उसने एक विकृतांग व्यक्ति को देखा। वह प्रायः नंगा था और गधे की पीठ पर सवार था जिसे एक आदमी पकड़े हुए था। वह विकृतांग अपने गधे को उसके सामने खड़ा कर देता और फातिहा पढ़कर उससे भिक्षा मांगता। पहली बार जब ऐसा हुआ तो वह उससे बच निकलना चाहता था। उसकी इस चेष्टा को देखकर वहां से होकर जाने वाले एक व्यक्ति ने उससे बहुत फटकारा और उसे समझाया कि वह विकृतांग एक महान संत है और उसका आदर करना चाहिए तथा वह जो चाहे उसे पूरा करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उस पर विपत्ति आ पड़ेगी। संतों के पृष्ठ संख्या 338 संबंध में इस प्रकार की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। यह समझा जाता है कि औलिया के लिए आचार विचार की कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा है और कोई गलती नहीं कर सकता। धार्मिक ग्रंथों में बताए हुए नियम कानून उस पर लागू नहीं किए जा सकते और उसके अद्भुत दीख पड़ने वाले व्यवहार को साधारण मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जलालुद्दीन रूमी ने कहा है कि औलिया का हाथ मानो परमात्मा का ही हाथ है। मी ई पृष्ठ 129। लेकिन इस प्रकार के विश्वास के कारण बहुत से धूर्तों को भी छूट मिल गई है जो संतों का स्वांग भर रचते हैं और मनमानी करते हैं। औलिया लोगों के संबंध में बातें करते समय मुसलमानों के सामने कुरान में वर्णित मूसा और खिज्र की कहानी बराबर रहती है। मूसा और खिज्र की कहानी में कहा गया है कि जब मूसा ने परमात्मा से पूछा कि और भी कोई ऐसा है जो उससे अधिक जानने वाला हो, उसे खिज्र के पास जाने के लिए कहा गया। खिज्र के बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं और रमते सूफियों को परमात्मा संबंधी अपने ज्ञान को बतलाते हैं। मूसा अपने नौकर जोशुआ के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां दो समुद्र मिलते हैं। जब वे वहां पहुंचे तब अपनी पकाई हुई मछली की बात भूल गए, जिसे खाने के लिए वे अपने साथ लाए थे। वह मछली समुद्र में चली गई। खाना खाने के वक्त जोशुआ ने मूसा को बतलाया कि उस मछली का क्या हो गया। जिस स्थान पर वह मछली समुद्र में प्रवेश कर गई थी, उस स्थान पर जब ये लोग गए तब खिज्र से उनकी मुलाकात हुई। मूसा ने खिज्र के साथ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की, जिसमें कि वह उससे ज्ञान सीख सके। खिज्र मूसा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि मूसा को कुछ पूछना नहीं होगा। दोनों समुद्र के किनारे साथ साथ चले। इसके बाद वे एक नौका पर बैठे। खिज्र ने उसमें छेद कर दिया। मूसा चिल्ला उठे कि यह उसने क्या किया। पृष्ठ संख्या 339। ऐसा करके क्या वह सबको डुबाना चाहता है? खिज्र ने कहा कि उसने पहले ही कहा था कि मूसा को धैर्य नहीं रहेगा और वह चुप नहीं रह सकेगा। मूसा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और वे लोग नौका छोड़कर आगे बढ़े। उन लोगों की एक नौजवान से मुलाकात हुई। खिज्र ने उसे मार डाला। इस पर फिर मूसा चिल्ला उठा कि खिज्र ने एक निरपराध व्यक्ति को मार डाला है। फिर खिज्र ने शर्त की बात याद दिलाई। मूसा ने इस बार भी अपनी भूल स्वीकार कर ली और कहा कि अब कुछ भी बोलने पर खिज्र उसको अलग कर दे सकते हैं। फिर वे आगे बढ़े और एक शहर में पहुंच वहां के निवासियों से खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वहां पर उन्हें एक दीवार मिली जो अब गिरी तब गिरी हो रही थी। खिज्र ने उसे मरम्मत करने में हाथ लगा दिया। मूसा से इस बार भी चुप नहीं रहा गया और उसने खिज्र से कहा कि अगर वह उसके लिए पारिश्रमिक चाहता तो वह उसे मिल जाता। इस पर खिज्र ने कहा कि उसने मूसा को 3 मौके दिए और तीनों बार मूसा ने गलती की, अतएव वह अब उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। फिर भी जाने के पहले उन्होंने मूसा को तीनों घटनाओं का अर्थ बतला देना चाहा। खिज्र ने बतलाया कि नौका में उन्होंने इसलिए छेद किया था कि वह नौका गरीबों की थी और उनके पीछे एक राजा आ रहा था जो सभी अच्छी नावों को अपने लिए जबरदस्ती ले रहा था। उसने लड़के को इसलिए मारा कि उसके माता पिता परम धार्मिक हैं और वह अत्यंत अधार्मिक था, अतएव वह उन्हें कष्ट पहुंचाता। उसे मारकर भगवान से उसने ऐसी प्रार्थना की कि वह उन्हें एक धार्मिक और भला लड़का दे। दीवार मरम्मत करने का कारण यह था कि वह दीवार 2 अनाथ बच्चों की थी और उसके नीचे खजाना गड़ा हुआ था। भगवान की इच्छा थी कि वह खजाना उन्हें तब मिले जब वे बड़े हो जाएं। इस प्रकार से खिज्र ने बतलाया कि जो कुछ भी उसने किया है वह भगवान की इच्छा से किया। खिज्र और मूसा की कहानी द्वारा यह बतलाने की चेष्टा की जाती है कि पृष्ठ संख्या 340, औलिया लोग जो कुछ भी करते हैं वह सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि में अनुचित और खराब मालूम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य औलिया को ही मालूम रहता है। भगवान की इच्छा से वह परिचित रहता है और भगवान उस पर दया करके अपने संबंध में जानने देते हैं। भगवान के साथ उसका एक संबंध रहता है जहाँ अन्य सांसारिक व्यक्तियों की पहुँच नहीं होती। खिज्र एक बहुत बड़े संत माने जाते हैं जिन्हें परमात्मा विषय ज्ञान का पता है। वह परमात्मा के गुप्त नाम को जानने वाले हैं, जिसे जानने पर जानने वाला चमत्कारों का अधिकारी हो सकता है। उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह नाना प्रकार के चमत्कार दिखला सकता है। खिज्र में विश्वास करना सूफियों की एक विशेषता है। परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त संतों को परमात्मा के गुप्त नाम से परिचय कराना खिज्र का काम है। खिज्र ने अमरता प्रदान करने वाले जल का पान किया है, अतएव संसार के अंत होने तक वे जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि उनका असली नाम अबुल अब्बास मलकान था और वे नूह के पुत्र थे। वे कई नामों से परिचित हैं, जैसे ख्वाजा खास, दुर्मिंद, दुमिंदो, जिंदा पीर तथा बीर बताल आदि। ग्लो पंट्रा का प्रथम खंड पृष्ठ 563। प्रचलित विश्वास के अनुसार जिस स्थान पर खिज्र बैठते हैं वह स्थान हरा हो जाता है। खिज्र विद्या के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। उन्होंने गजाली को सहज ही सब विद्या सिखा देनी चाहिए, लेकिन गजाली ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। खिज्र ने उसे कई पीपे तेल दिए जिसमें वह अपना विद्याध्ययन जारी रख सके। वही पृष्ठ 563। खिज्र उन संतों में है जिनकी प्रतिष्ठा समस्त इस्लामी जगत में समान रूप से होती है। और भी अन्य संत हैं, लेकिन वे स्थान विशेष में ही पूजे जाते हैं। हिज्र शब्द का अर्थ समुद्री रंग का हरापन है। उसका संबंध जल से जुड़ा हुआ है और मछली खिज्र का वाहन है। जल के कारण अगर किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो तो खिज्र का स्मरण किया जाता है। अगर पृष्ठ संख्या 341 कोई समुद्र की यात्रा करता है तो वह खिज्र को याद करेगा। अगर कोई कुएं में उतर रहा है तो वह खिज्र का स्मरण करेगा। अगर बाढ़ की आशंका हुई तो उनकी याद लोगों को आती है, और अगर नदी में जल की कमी हो रही हो तो भी लोग उनकी शरण में जाते हैं। वही पृष्ठ 564। वे प्राण शक्ति देने वाले समझे जाते हैं। भारतवर्ष में मुसलमान उनकी एक विशेष ढंग से अर्चना करते हैं। एक विशेष त्योहार होता है जिसे बेड़ा कहते हैं। एक लकड़ी के तख्ते पर चिराग, फल, फूल, मिठाइयां आदि रखकर उसे खिज्र के नाम पर जल में बहा दिया जाता है। ई इंडी पृष्ठ 135-136। लोगों का विश्वास है कि इस प्रकार की पूजा से खिज्र प्रसन्न होंगे और मंगल करेंगे। संतों के चमत्कारों के संबंध में ऐसा विश्वास मुस्लिम जनता में फैला हुआ है कि भगवान ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार संसार के एक कोने से दूसरे कोने में क्षण भर में चले जा सकते हैं। संसार की दृष्टि से एक क्षण में ओझल हो सकते हैं और एक ही क्षण में सामने आ उपस्थित हो सकते हैं। वे एक क्षण में हजारों मील की यात्रा कर अन्य स्थानों पर पहुँच सकते हैं। पानी पर सहज भाव से चल सकते हैं। पहाड़ों की चोटियाँ उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा सकती। साधारण मनुष्यों के लिए जो असंभव है उसमें उनकी अबाध गति है। वे शक्ति से वर्षा कर सकते हैं, जड़ वस्तुओं से जो बेजान है बातें कर सकते हैं, भविष्य की बातों को देख सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक ही समय में अनेक स्थानों पर दिखलाई पड़ सकते हैं, मृतकों को जिला सकते हैं, मुंह से फूंक कर बीमारी भगा सकते हैं, मिट्टी को सोना बना सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जहाँ भोजन की सामग्री, जल आदि न हो, वहाँ अपनी अलौकिक शक्ति के बल से वस्तुओं को मंगा सकते हैं। इस प्रकार के अनेक कार्य वे कर सकते हैं जिनकी गिनती करना संभव नहीं। इन चमत्कारों के संबंध में नाना प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं, और जिस पृष्ठ संख्या 342 संत की जितनी अधिक प्रसिद्धि है उसके नाम के साथ और भी अधिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक और जहां औलिया लोगों को शुभ फल और मंगल करने की शक्ति है, वहां अप्रसन्न होने पर अमंगल करने की भी क्षमता है। लोग अमंगल के भय से कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे वे अप्रसन्न हो। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक शाह ने शेख निजामुद्दीन औलिया का अपमान किया था, अतः उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। इंडी ई पृष्ठ 132। किसी का कहना है कि उसकी मृत्यु का कारण मुल्तान के शाह रुकने आलम का शाप था। बादशाह की कुछ बातों को अपमानजनक समझकर वे अप्रसन्न हुए थे। ग्लौपंट्रा का खंड 1 पृष्ठ 493। फुतुहाते फिरोज शाही में फिरोज शाह ने लिखा है कि जहाँ कहीं उसने किसी फकीर की बात सुनी वहाँ वह उसके दर्शन के लिए जाता था जिसमें कि वह उसके आशीर्वाद ग्रहण कर सके। इंडी ई पृष्ठ 132-133। अमीर खुसरो ने लिखा है कि किस प्रकार से सीधी मौला नामक एक दरवेश को मरवा डालने के कारण अकाल पड़ गया था और लोग भूखों मरने लगे थे। सीधी मौला सन 1295 ईस्वी के लगभग बादशाह फिरोज शाह खिलजी के काल में हुआ था और उस बादशाह को उस पर संदेह हो गया था कि वह उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वही पृष्ठ 133। संतों के बारे में लोगों की यह भी धारणा है कि साधारण लोगों के लिए सब समय यह पता लगाना अत्यंत कठिन है कि संत कौन है। ऐसा समझा जाता है कि बहुत से ऐसे संत हैं जो सांसारिक लोगों पर अपने को प्रकट नहीं करते। हुजवीरी ने संतों के बारे में कहा है, कश्फ पृष्ठ 212-213, कि परमात्मा के विशेष कृपा पात्र ऐसे संत हैं जिन्हें परमात्मा ने विशेष रूप से अपना बना लिया है और उन्हें अपने राज्य का अधिकारी चुना है और अपने कार्यों को पृष्ठ संख्या 343 प्रकट करने के लिए विशेषत्व प्रदान किया है तथा भिन्न भिन्न चमत्कारों का उन्हें मालिक बनाया है। उनके अवगुणों को उसने दूर कर दिया है और नीचे की ओर खींचने वाली आत्मा तथा वासनाओं से मुक्त कर दिया है। इससे वह उसकी चिंता में निरत रहता है और उस परमात्मा के साथ उसकी अभिन्नता है। आगे फिर हुजवीरी ने बतलाया है कि इन संतों में 4000 ऐसे हैं जो गुप्त रहते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते और न वे अपनी श्रेष्ठ अवस्था से ही परिचित रहते हैं। सब समय वे अपने आप से तथा मनुष्यों की दृष्टि से ओझल रहते हैं। चमत्कारों के कारण जब लोगों को इस प्रकार के संतों का पता चल जाता है तब वे उनकी पूजा करते हैं। इन संतों के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव केवल मृत्यु के बाद ही नहीं होता बल्कि उनके जीवन काल में भी होता है। इन्हीं संतों के बारे में मोहम्मद हमीद ने लिखा है, ग्लौपंट्रा का खंड 1 पृष्ठ 525, कि भारतवर्ष में एक प्रकार के ऐसे भी संत हैं जिन्हें पीर ए गैब या गैब पीर कहते हैं। वह नाम उन्हें संभवतः इसलिए दिया गया है कि अपने जीवन काल में वे अपनी शक्ति के द्वारा लोगों की आंख से ओझल हो जाते हैं या मृत्यु के बाद उनका शरीर अदृश्य हो गया होता है। संतों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पता रहता है या नहीं, इसके संबंध में दो प्रकार के विचार प्रकट किए जाते हैं। मजहब की पाबंदियों को पूरा पूरा मानकर जो चलने वाले हैं, उनका कहना है कि संतों को अपनी शक्ति का पता रहता है और क्योंकि उन पर परमात्मा की विशेष कृपा रहती है, इसलिए वे अपनी शक्ति से परिचित रहने पर भी गुमराह नहीं होते। इस प्रकार के विचार रखने वालों का कहना कष्ट पृष्ठ 218 है कि जो लोग यह समझते हैं कि परमात्मा की खिदमत तभी तक जरूरी है जब तक साधक संत नहीं हो जाता, बिल्कुल गलत है। उनके अनुसार परम सत्य तक पहुंचने के मार्ग में कोई ऐसा मुकाम नहीं जिसमें खिदमत की पाबंदी छोड़ दी गई हो। पृष्ठ संख्या 344। इस मत की पुष्टि के लिए अल हुजवीरी ने कई उदाहरण दिए हैं। हुजवीरी ने लिखा है कष्ट पृष्ठ 218 कि मैंने सुना है कि एक आदमी शेख अबू सईद से मिलने आया और मस्जिद में घुसते समय उसने पहले बायां पैर रखा। शेख ने यह कहते हुए उसे हटा देने के लिए कहा कि जो व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि दोस्त के घर में कैसे प्रवेश करना चाहिए, वह हम लोगों के योग्य नहीं है। इस्लाम के धर्म ग्रंथों में बताए हुए मार्ग पर चलने वाले सनातन पंथी साधारणतः संतों के बारे में इसी तरह का विचार रखते हैं, लेकिन इससे भिन्न मत रखने वालों का कहना है कि संतों को अपनी वास्तविक शक्ति का पता नहीं रहता। वे जैसे संसार को भूल जाते हैं, वैसे अपने को भी भूल जाते हैं। वे संसार के अन्य प्राणियों जैसे नहीं होते। उनके लिए धार्मिक नियम कानूनों की पाबंदियों का कोई अर्थ नहीं। जब तक उनकी साधना पूरी नहीं होती, तभी तक वे इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं, और जब संत की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब उनके लिए ये सारी चीजें निरर्थक हो जाती हैं। उनके मतानुसार ये नियम कानून भी संतों के लिए अवरोध जैसे हैं। इनका ज्ञान रहना मानो उनके और परमात्मा के बीच का पर्दा है। चाहे जो हो, सनातन पंथियों के जोर देने पर भी लोगों ने संतों के आचार विचार पर ध्यान देना उचित नहीं समझा और उन्हें बराबर एक दूसरे जगत का प्राणी मानते रहे और साधारण मनुष्यों की कोटि से परे मानते रहे। उनमें किसी प्रकार की त्रुटि विच्युति का होना वे नहीं मानते। सूफियों का विश्वास है कि प्रत्येक काल में एक ऐसा संत अवश्य होता है जो सर्वोच्च स्थान का अधिकारी होता है। उस संत को कोई देख नहीं सकता, वह बराबर अदृश्य रहता है। संसार को चलाने के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए यह औलिया संत परमात्मा के द्वारा शासक के रूप में भेजे जाते हैं। इस प्रकार से बहुत से संत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन संतों की एक नियत संख्या है। किसी के अनुसार पृष्ठ संख्या 345, यह संख्या 4000 है और कोई उसे 356 बतलाता है। आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता के अनुसार इनकी 7 श्रेणियां हैं। इनकी समिति को गौस उल आलम कहते हैं। गौस उल आजम इनमें सर्वोच्च है, जो अपने पूर्ण बल से दूसरों के पाप काटता है। कुतुब उसका वजीर है, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ संत होता है। उसे कुतुब उल वक्त या कुतुब उल अकतूब कहते हैं। ग्लौपंट्रा का पृष्ठ 524। हुजवीरी ने बतलाया है कश्व पृष्ठ 214 कि इस प्रकार के अधिकारियों में 300 ऐसे हैं जिन्हें अख्यार कहते हैं, 40 अब्दाल हैं, 7 अब्रार कहलाते हैं, 4 औताद हैं, 3 नुकबा और 1 कुतुब है जिसे गौस भी कहते हैं। ये एक दूसरे को जानते हैं और बिना एक दूसरे की राय के कोई काम नहीं करते। कुछ लोगों के अनुसार सबसे ऊपर गौस, 4 औताद, 7 अख्यार, 40 अब्दाल, 70 नुजबा और 300 नुकबा की समिति है। इनकी एक विशेष संख्या बराबर बनी रहती है, उसमें कमी बेशी नहीं होती। ई इंडिया पृष्ठ 287 तथा इंसा ई प्रथम खंड पृष्ठ 69। ये सभी अदृश्य रहते हैं और उनकी एक शासन सभा है जिसकी बराबर बैठकें होती हैं और कुतुब उन सबों के ऊपर है। इन बैठकों में आने जाने में इन लोगों के लिए समय और दूरी की कोई भी बाधा नहीं है। एक क्षण में ये संसार के एक कोने से दूसरे कोने में आ जा सकते हैं। इनके लिए जैसे पहाड़ों, नदियों, समुद्रों की कोई बाधा नहीं है। अल हुजवीरी ने कश्फ पृष्ठ 229 तिरमिज के अबू बकर वर्राक के संबंध में लिखा है कि एक बार मोहम्मद बिन अली अल हकीम ने उन्हें कहीं ले जाना चाहा। अबू बकर वर्राक ने शेख की जैसी मर्जी कहकर अपनी सम्मति जताई। जैसे ही वे लोग रवाना हुए, अबू बकर बर्राक को एक भयानक सुनसान स्थान के बीचों बीच हरे भरे पेड़ के नीचे एक सोने का सिंहासन दिख पड़ा। उनके पास एक पानी का सूता बह रहा था। सुंदर पोशाक पृष्ठ संख्या 346 पहने हुए एक व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा हुआ था। जब मोहम्मद बिन अली वहां पहुंचे तब वह आदमी उठ खड़ा हुआ और उन्हें सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद चारों ओर से लोग आने लगे और देखते देखते उनकी संख्या 40 हो गई। तब मोहम्मद बिन अली ने अपना हाथ घुमाया और तुरंत आसमान से भोजन आया और उन लोगों ने भोजन किया। मोहम्मद बिन अली ने एक आदमी से कुछ पूछा और दोनों ने काफी देर तक बातें की जो अबू बकर के बिल्कुल समझ में न आई। जब ये दोनों तिरमिज लौटे तब अबू बकर के पूछने पर मोहम्मद बिन अली ने बतलाया कि वह आदमी खुद बता जिस पर सारी दुनिया की व्यवस्था का भार है।